हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो फाइनली आज हमारे साथ हैं आकाश, ठीक है, एंड इनके साथ हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले होंगे और ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो फाइनली आकाश को हम वेलकम कर।
तो यहाँ पे हमने हेलो बोला, वो भी बोला, बट जो वॉइस था वो रिकॉर्ड हो ही नहीं।
गजब बेइज्जती है।
फाइनली आकाश को हम वेलकम करते हैं। तो कैसे हो?
थैंक यू भाई, मैं मस्त, आप बताओ?
हम भी बढ़िया हैं। ओके, सो आज वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, ठीक है, जो डाउट्स हैं, आई थिंक 15 टू 16 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको पूछेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो।
सो हे गाइस, माय नेम इज आकाश बडोला और अभी मैं करंटली 11th स्टैंडर्ड में हूँ, क्योंकि अभी मेरा CBSE 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया और उसमें परसेंट प्लस आया, बस मेरा जो परसेंट आई है, तो इसी की वजह से मेरे को इनके चैनल पे आने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा, आपने इस चैनल पे बुलाया मेरे को एंड आपने इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पर आकर आपके चैनल की कुछ वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी शुरू करते हैं।
वेलकम वेलकम। ओके, तो देखो जैसे कि टॉपर्स का तो सभी इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, बट मैंने ट्राई किया कि 80, क्योंकि भाई मेहनत तो सभी कर रहे हैं ना, 80% वाला भी कर रहा है और 90 वाला भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले है कि यहाँ पे हाउ यू वर इन स्टडीज बिफोर क्लास 10। क्लास 10 से पहले तुम कैसे थे?
पहले भी मैं सेम था, मतलब 80 के अराउंड ही मेरी परसेंट आती थी, बाकी सेम था।
अच्छा, ठीक है। और क्लास 10 में मतलब स्टार्टिंग से ही कैसे थे?
स्टार्टिंग से तो मैं पूरा ढीला था, ठीक है,
नर्सरी से।
हाँ, नर्सरी से। अच्छा, तो नर्सरी से तो मैं मस्त था स्टडीज में।
अच्छा, ठीक है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है ना, टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या बोलना चाहोगे कि कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए क्लास 10th में?
तो टाइम मैनेजमेंट का तो यही है, आप अपने पास क्या क्या काम है आपके पास, ठीक है। तो मैं अपना एक YouTube चैनल भी हैंडल करता हूँ, तो मेरे को उसके हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना पड़ता था। 10th का भी मेरे को पढ़ना था, साथ में YouTube भी मैनेज करना था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम मैनेज करता था। बाकी अगर आप लोगों को अपनी कोई और हॉबी फॉलो करनी है या फिर आप लोगों को किसी और चीज में इंटरेस्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने आपके पास क्या क्या काम है उसके अकॉर्डिंग, आप लोग से बढ़िया अपने आप को कोई नहीं जानता। और आप लोग जिस तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोच सकते हो, उसके ऊपर पूरा टाइम टेबल रेडी कर सकते हो, वो कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग बनाओ कितना आपके पास टाइम किस चीज के लिए है, तो मतलब आप लोग उसे फॉलो भी करो। बाकी इतना ही है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर।
अच्छा, तुमने ऐसे की बताया तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तो मतलब किस कैटेगरी में है?
पहले मैं गेमिंग वीडियोस बनाता था, फिर बैन हो गया गेम, फ्री फायर नाम सुना होगा।
हाँ,
तो उसके बाद मैंने कंटेंट चेंज कर लिया अपना।
अच्छा, तो मतलब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन, मतलब पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब उनका?
तो पहले लॉकडाउन में मैंने शुरू किया था, तो उस समय तो टाइम ही टाइम था, कुछ काम नहीं था अपने पास, तो उसी के अंदर शुरू किया एंड मतलब थोड़ा बहुत ग्रो कर लिया। जब हो गए थे अराउंड मेरे 1K प्लस सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम हो गया, देन मैंने अपना मोनेटाइज करवाया एंड उसके बाद मतलब फर्स्ट पेमेंट भी आ गई एंड मतलब फिर तो पेरेंट्स खुशी होंगे।
अच्छा, फर्स्ट पेमेंट आ गई है।
हाँ,
तो फिर तुम्हारा कि टाइम टेबल कंपलसरी है कि नहीं, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहिए कि हमको गोल के हिसाब से चलना चाहिए?
मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर अपने टाइम टेबल के हिसाब से चल सकते हो तो उसके हिसाब से चलो। बाकी आप लोग अपना एक गोल फिक्स कर सकते हो, वीकली मंथली कुछ भी गोल फिक्स कर लो, देन उसके हिसाब से अपने आपका टाइम टेबल बनाओ एंड फॉलो करो उसे, क्योंकि बीच में फिर फंक्शंस आ जाते हैं एंड कुछ मतलब शादी हो गई, बर्थडे हो गया, तो मतलब जैसे नाइट में हम लोग इंजॉय करते हैं फिर, तो उसमें जो टाइम टेबल का टाइम होता है वो पूरा उधर कट जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ जिस तरीके के आपके पास टाइम है।
अच्छा, ठीक है। और फिर ये पूछना चाहूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब 11th में तो सब्जेक्ट कौन सा चूज किया और फिर क्यों चूज किया?
कॉमर्स चूज किया है, क्योंकि साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं है और कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो ले लिया।
ठीक है, बढ़िया है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि तुम क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहोगे जूनियर्स को, मार्क्स कितने स्कोर करने चाहिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए?
तो मैं यही कहूंगा, स्टार्टिंग से अगर आप कोचिंग जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो जो भी वहां पे पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। अगर आप लोग घर पे आके प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं करता था मैथ्स की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा, पर मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो एकदम ज्यादा क्लियर था। एंड मेरे को अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था तो मैं यूट्यूब पे आके वीडियोज को देखता था, देन उसका कॉन्सेप्ट मैं 2-3 बार समझता था ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं आगे जाके भी काम आएगा। तो उसकी वजह से अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है, तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करो, वो इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट का।
ठीक है, बढ़िया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम क्या प्रेफर करना चाहोगे? स्कूल को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि टीचर्स कहते हैं अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है, कि यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या कोचिंग से करना चाहिए।
तो अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर रहे हो एंड आपके पेरेंट्स वहां पे कर रहे हैं, तो स्कूल में भाई बहुत ज्यादा मतलब पेरेंट्स अपना टाइम देकर भेजते हैं, अपना मनी देकर भेजते हैं कि भाई हम इतना पे कर रहे हैं तो बच्चा उसके बदले हमें कुछ करके दिखाए। तो अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हो एंड आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको स्कूल में भाई अपना 100% देना है। जिसकी मैंने बताया कॉन्सेप्ट आप लोग स्कूल में समझ लो, बाकी आप लोग को अगर वहां पे समझने में नहीं आता, देन आप लोग कोचिंग या ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो एंड अपना सेल्फ स्टडी के लिए भी कुछ टाइम बचाओ।
अच्छा, ठीक है, बढ़िया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट बुक्स, तुमने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी क्लास 10th में?
मैंने तो एनसीईआरटी भी अच्छे से नहीं पढ़ी, मैंने बस वो जो शोभित निर्वाण के नोट्स थे, ठीक है, शोभित सर ने जो भी नोट्स दिए थे वो A to Z पूरे रट लिए और बाकी मतलब पूरा अच्छे से समझ लिया उसको। बहुत मस्त,
सेम हमने भी यही किया था।
A1 मटेरियल है,
A1 है ये,
बहुत मस्त,
बहुत मस्त।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि तुमने बताया तुम्हारा यूट्यूब चैनल था, ठीक है, तो 10th के हिसाब से हमें सोशल मीडिया चलाना चाहिए? अगर हम कंट्रोल में है तो उसको चला सकते हैं या बिल्कुल उसको साइड कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम रहता है?
तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोग कंट्रोल, वैसे तो होता नहीं है, ठीक है। मैं भी इतना ज्यादा एडिक्ट था, मतलब अभी भी इतना ज्यादा एडिक्ट हूँ सोशल मीडिया का, मतलब हर 15 मिनट में मेरे को फोन चाहिए होता है, देखना होता है, स्क्रॉल करना होता है, यूट्यूब स्टूडियो खोला क्या हो रहा है, व्यूज का क्या हो रहा है। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि अगर सोशल मीडिया आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड कर रहा है, देन आप लोग उसे टाइम दो। अगर वो आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एड नहीं कर रहा है तो उसको टाइम मत दो भाई, जब आपका टाइम कहीं पे इन्वेस्ट हो ही नहीं रहा है तो फालतू में आप लोग अपना टाइम क्यों दो उधर, तो यही बात है।
हाँ, ठीक है, सेम हियर।
माइक माइक
पूछना चाहूँ कि तुम्हारा बेस्ट टाइम क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही तुमने प्रिपरेशन कर रखी थी 10th की कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आके तुमको लगा कि नहीं अब तो करना ही चाहिए?
नहीं, मैंने अपना स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट क्लियर रखा था, मैं इतना भी नहीं पढ़ता था, मतलब सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने लग गया, रात को 12-12 बजे तक पढ़ रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में तो सिर्फ 1 घंटा मुश्किल से सेल्फ स्टडी को देता था, मतलब समझ लो 1 घंटे से भी कम मैं पढ़ता था सेल्फ स्टडी में, बाकी मैं जितना भी पढ़ता था मतलब स्कूल्स में ट्यूशंस में अपना कॉन्सेप्ट जो की है वो क्लियर कर लेता था, एंड घर पे आके थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर लेता था, जो भी मेरे को समझ में नहीं आता था यूट्यूब से देख लेता था। एंड लास्ट के 1 मंथ में मैंने अपना यूट्यूब चैनल ही पूरा मतलब बंद कर दिया था, क्योंकि मैं कंट्रोल कर सकता था, वहां पे मैं चला सकता था, बट मैंने पेरेंट्स के लिए बंद कर दिया, क्योंकि फिर पेरेंट्स बोलेंगे कि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं एंड तुम फोकस नहीं कर रहे हो। बाकी मैं वहां पर भी अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकता था टाइम मैनेज करके, बट मैंने पेरेंट्स के लिए नहीं किया, तो वो भी थोड़ा देख के चलना पड़ता है। एंड स्टार्टिंग से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखा, बस इतना ही है।
ठीक है, फिर है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए पहले या जितना हुआ है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना चाहिए?
मतलब जैसे कि मैंने बताया सिलेबस तो होना ही चाहिए, बट कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस करते जा रहे हो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा है, एंड मैं बताता हूँ एक स्टोरी कि मेरा एक ट्यूशन में एक फ्रेंड था, ठीक है, जहां पे मैं जाता था वहां पर वो क्या करता था, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं करता था, बस मतलब 12-12 सुबह उठ जाता था 4-5 बजे, एंड वहां पे वो क्वेश्चन सॉल्व करता था मैथ्स के, एंड उसका मैथ्स में कुछ भी कहां पे क्या फॉर्मूला लगना है, कहां पे क्या उसका कॉन्सेप्ट लगना है, साइंस मैथ जहां पर भी उसको कुछ नहीं पता था, दिन भर मतलब लिखता रहता था। एंड उसका जो पीए होते हैं स्कूल में, यूटी होते हैं, वहां पे उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि वो सिर्फ अपना मतलब प्रैक्टिस करता रहता था। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन तब तक यार आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग को टाइम देता था, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर था तो कैसे करेगा सॉल्व, तो तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास में मतलब कितनी रैंक रहती थी, 10th में भी या 9th में?
क्लास में तो मतलब थर्ड फोर्थ ऐसे कुछ।
अच्छा, और 9th में मतलब कैसा था परफॉर्मेंस? 9th में सोच रहा था कि 10th की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, कि 10th में आने के बाद लगा कि अब करना चाहिए?
नहीं, मैं कुछ सोच के नहीं रखा था, मतलब बस अपने को पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, मतलब रैंक वैंक कुछ लानी, इतनी परसेंट लानी है, कुछ ज्यादा टारगेट नहीं था मेरा। मतलब अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। एंड मतलब 9th में तो क्या सीन था, 9th में आप जानते होगे लॉकडाउन आ गया था, तो 9th का जो मेरे को कॉन्सेप्ट था वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हुई, नया नया था सब कुछ, तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। एंड 9th तो ऐसे ही गई पूरी, मतलब वहां पे तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। बट 10th में आके थोड़ा सा फोकस किया, क्योंकि फिर से मतलब एक न्यू जर्नी शुरू थी लॉकडाउन के बाद की, तो 10th में आके फोकस किया। बाकी 9th में तो मैंने इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया था एंड इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था।
और फिर ये पूछना चाहूंगा कि तुमको 9th ज्यादा इजी लगा कि 10th ज्यादा इजी लगा? क्योंकि ऐसा बोलते कि 10th ज्यादा इजी होता है, तो तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुमको क्या लगा?
तो 9th जैसे कि मैंने बताया, मेरे को अभी तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे को अभी याद नहीं है मैंने 9th में क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि लॉकडाउन में आया, अचानक से ऑनलाइन क्लासेस आई, सर पता नहीं वीडियो खोल के क्या लिखवा रहे हैं अपनी कॉपी में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो 9th मेरे को लगता है थोड़ी सी हार्ड होती है 10th से, इतनी भी ज्यादा नहीं, पर मैंने तो फोकस नहीं किया अच्छे से 9th में, तो मैं नहीं बता सकता हूँ कौन सी ज्यादा हार्ड होती है। मैं 10th पे गया था तो मेरे को 10th का पता है, 10th तो ईजी है, मतलब बाकी सारी क्लासेस ईजी है। 9th में क्या होता है, नया कॉन्सेप्ट आ जाता है फिजिक्स, 9th की वो थोड़ी सी हार्ड लगी थी मेरे को, फिजिक्स में थोड़ा सा हार्ड है।
सेम इधर हमारे भी, जब नाइन्थ
हाँ
मतलब 8th से 9th में जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया ना, तो पहले जो टेस्ट हुआ था मैथ्स और फिजिक्स में, 80 में मेरे 15 मार्क्स आए थे।
वो हार्ड होती है उसकी फिजिक्स।
स्टार्टिंग में वो समझना पड़ता है, फिर बाद में वो आ जाता है फ्लो में। ओके,
हाँ
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवीजन तुमने कैसे किया, रिवीजन कैसे करना चाहिए?
रिवीजन तो वो तो मतलब जिस नोट से आप लोग पढ़ रहे हो, तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं शोभित निर्वाण के नोट से पढ़ रहा था, तो वहां पर उन्होंने एक स्लाइड में एक पेज बना रखा है आगे का, तो जितना भी आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो, ठीक है, मतलब रिकॉल करो क्या क्या पढ़ा है पहले पेज में, उन्होंने सब कुछ लिख रखा है, तो उसी के हिसाब से मतलब रिविजन टाइम टू टाइम करते रहो, क्योंकि फिर आप लोग भूल जाते हो ज्यादा टाइम तक अगर आप लोग रिवाइज नहीं करते हो, तो रिविजन बहुत ज्यादा मस्ट है, करना ही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SQP और PYQ लगाए थे क्या, मतलब मिनिमम कितने लगाए होंगे?
नहीं, PYQ तो मैंने किए ही नहीं मैंने किए सैंपल क्वेश्चन पेपर के, मैंने देख लिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बाकी सॉल्व तो मैं वो भी नहीं करता था, मैं सॉल्विंग में मतलब बहुत ज्यादा मैं लेजी हूँ एंड मेरे को सॉल्व करने का कुछ मन ही नहीं करता है, तो मैं कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेता हूँ, बाकी नहीं आते कुछ क्वेश्चन समझ में देन उसको सॉल्व करता हूँ, एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं देन मैं सॉल्व नहीं करता हूँ।
अच्छा, तो मतलब अगर तुमसे पूछ कि हमें कौन से SQP सैंपल क्वेश्चन पेपर लेने चाहिए, तो किस के ले सकते हैं? तुमने देखा हो या
मतलब
तुम्हारे किसी अच्छे फ्रेंड ने देखा हो, तुम क्या रिकमेंड करना चाहोगे?
मैं तो लिए नहीं, ठीक है, पहली बात तो मैं तो कहूंगा CBSE जो सैंपल क्वेश्चन पेपर निकालती है उसका आप लोग पैटर्न देखो, किस तरीके से उसमें पैटर्न है, किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस है, अगर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड अगर आप लोग से वो जो CBSE जो सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाल रही है वो सॉल्व हो जाते हैं, देन यार आपको जरूरत नहीं है किसी और सैंपल क्वेश्चन पेपर लेने की। तो आप लोग जो NCERT की बैक एक्सरसाइज हो उसको क्लियर करो, क्योंकि मैंने देखा है NCERT की जो बैक एक्सरसाइज होती है वो सही में डिफिकल्ट होती है, ठीक है, मैंने भी सॉल्व करने गया था 10th में तो वो नहीं हो रही थी एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर आप लोग फिजिक्स की देखो एंड और सारी चीजों की भी देखो, तो पहले NCERT की बैक एक्सरसाइज सॉल्व करो, एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर का तो ये है कि CBSE जो निकालती है यार उसको पैटर्न फॉलो करो उसका, एंड अगर आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं देन बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, नहीं होते तो देन आप लोग ले सकते हो किसी और सैंपल पेपर को, प्रैक्टिस कर सकते हो और से।
हाँ ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे पिछले 2 साल से, तो ऑफलाइन एग्जाम का क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि 2 साल से तो ऑनलाइन थे, तो कुछ चेंजेस लगा कि वही था?
तो चेंज तो बहुत बड़ा था, क्योंकि ऑनलाइन में तो चीटिंग चल रही थी फुल टू फुल। गूगल खोला पीछे से और मतलब लिख रहे थे वहां से। तो 9th में तो पूरा ऐसे ही किया था, एंड 10th में फिर मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस आया। जो मेरा पहले का जो था, मतलब पहले भी मैं अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लेता था, तो फिर मैंने वो चीज फॉलो की, अपना जो रूटीन था एंड जिस तरीके से मैं पढ़ता था। एंड देन मैंने 10th में अपना इजिली ऑफलाइन एग्जाम निकाल लिए, तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं। अगर आप लोग मतलब पढ़ लेते हो तो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो।
अच्छा ठीक है, और क्या बताना चाहोगे कि नोट्स कैसे बनाए इसके बारे में कुछ,
नोट्स
और
तो आप
स्टडी
लोग
कैसे?
स्टार्टिंग से ही रेडी कर लो, एंड सेल्फ स्टडी तो भाई बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो, आप लोग मतलब दूसरा जो पढ़ा रहा है उसे सुन रहे हो, खुद से नहीं समझ रहे हो। तो सेल्फ स्टडी करो, आप लोगों को क्या क्या समझ में आया है, एंड देन रीड करो जो भी इंग्लिश में जो चैप्टर्स होते हैं, या फिर और भी साइंस ले लो, एंड मैथ्स में भी आप लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस को टाइम दो। बाकी 10th बहुत ज्यादा ईजी क्लास है, 9th से तो ईजी है।
ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बट हाँ कितने आए थे 10th में?
10th में परसेंट
अभी कितने आए?
87.4।
87.4, ठीक है, बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
थैंक यू।
फिर है कि अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे?
बस यही, मतलब बहुत ज्यादा इजी क्लास है, 10th बोर्ड करके जो हवा बना रखा है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं डिफिकल्ट है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हो, स्टार्टिंग से ही मतलब कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हो, तो बहुत ज्यादा इजी क्लास है। मैं भी, जैसे कि मैंने बताया, मैं भी स्टार्टिंग से ज्यादा फोकस नहीं करता था, मतलब बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। स्कूल्स में, कोचिंग में, ट्यूशन में जो भी पढ़ा रहे हैं उन सबको ध्यान दो। मतलब स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में अच्छे से पढ़ाते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो आप लोग वहां पे बहुत ज्यादा अपना फोकस दो, एंड आप लोग वहां पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? आप लोग स्कूल में अपने 4-5 घंटे दे रहे हो, तो वहां पर जो कि अपना टाइम है वो बचाओ, एंड वहां पे कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। बस यही मैसेज है जूनियर्स के लिए।
ठीक है, थैंक यू। और लास्ट है बट नॉट लीस्ट, ठीक है, कि कभी सोचा था इंटरव्यू होगा?
नहीं, सोचा तो नहीं था, पर मौका मिल गया, उसके लिए आपको थैंक यू वंस अगेन।
वेलकम। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा तुमसे बात करके।
मेरे को भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगा।
तो ये वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली होगी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो।
आपका क्या स्कोर रहा था 10th में?
मेरा 93 आया था।
और मतलब एक्सपीरियंस, आपके टाइम का एक्सपीरियंस क्या था?
हम एक्सपीरियंस क्या आईडिया, हमारे बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुए, हमको तो यही ताने मिलने, यही एक्सपीरियंस है हमारा।
ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको भी ऐसे ही सब लोग चिढ़ाते हैं, तुम्हें ऐसे ही फ्री में पास कर दिया ऐसे करके। तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया भी हुआ, खराब भी हुआ, किसी के लिए तो बढ़िया हुआ, किसी के लिए खराब हुआ। बाकी तो और तो कुछ नहीं है।
ठीक है, ओके, थैंक यू,
थैंक यू सो मच,
थैंक यू, ओके, बाय
बाय।